بھائی جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو آگے آ جاؤ, دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا چاہیے. آ جاؤ. ہمارے ایک دو ساتھی اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آ جاؤ. آ جاؤ ماشاء اللہ. ہم تو سنت اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا بیٹھنے کا عمل بھی سنت کے مطابق ہوگا. آ جاؤ. جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو تمام ساتھی مجمع کے ساتھ مل لو. آ جاؤ. آپ کو معلوم ہے وہ 99 کا قاتل ایک بالشت آگے بڑھا تھا اور اس کے اس عمل کو اللہ نے پسند کر کے رحمت والے فرشتے اتار کر پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. ہم بھی اللہ کے لیے آگے بڑھیں گے. آؤ آؤ ماشاء اللہ. ایک دو ساتھی مجمع کو لے کر آؤ, اکیلے مت آؤ. آؤ اپنے دائیں بائیں ساتھیوں کو جلدی سے لے کر آ جاؤ. آخر تک جو بیٹھے ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہماری یہ محفل نہیں ہے بلکہ ہماری یہ دینی مجلس ہے. آ جاؤ. آؤ ماشاء اللہ. آؤ ہمارے آگے بڑھنے کو اللہ قبول فرماوے. ہم تو ہدایت کے لیے ہی آئے ہیں اور ہماری پوری دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو اللہ پاک اچھی بنا دے. آ جاؤ ماشاء اللہ. ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ہم ان سے درخواست کرتے ہیں. آ جاؤ آگے بڑھ جاؤ. جو ہمارے ساتھی سامنے چلتے پھرتے ہیں ہماری مجمع جوڑنے والی جماعت, ان تمام کو جمع کر لو. ہم ایک مرتبہ ایک اجتماع میں گئے اور پورے اجتماع میں مغرب کی نماز کے بعد چکر لگایا تو ایک آدمی بھی باہر گھومتا پھرتا نظر نہیں آیا. بعد میں کسی نے یوں کہا کہ بشارت ہم کو یہ ملی کہ تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ نے اجتماع کو قبول کر لیا. تو ہمارے تین ساتھی ذرا مجمع جوڑنے والے یہ باہر جو بچے کھڑے ہیں, اب ان تمام کو یہاں بلا لو. کینٹین کے قریب میں تو کینٹین کو بند کرا دو. یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے دوستو جو انداز سے ہم بیٹھے ہیں. نہیں ہم تو محتاج بن کر بیٹھیں گے. ہم تو اپنی ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے طلب کے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس اجتماع سے ہم کو ہدایت دے گا اور ہماری دینی لائن کی ترقی اللہ عطا فرمائے گا. آ جاؤ ماشاء اللہ. آگے دیکھو کچھ سامنے لوگ کھڑے ہیں. ہمارے دو تین ساتھی وہاں پہنچ کر ان تمام کو بلا کر لیا. یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آنے کے بعد بھی 5-10 منٹ تک آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کرے, یہ مناسب نہیں ہے. آج تو ہو گیا ہو گیا, لیکن آج سے لے کر اجتماع کے ختم تک اور پوری زندگی موت تک کے لیے نیت کرو, انشاءاللہ ہر اجتماع میں پہلے سے بیٹھ جائیں گے. ارے بیٹھو گے انشاءاللہ. آ جاؤ. یہ جو بھائی ہمارے بیٹھے آ جاؤ. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آ جاؤ. آؤ آؤ. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے آ جاؤ. آ جاؤ. جو جن کا جن کی طرف میرا ہاتھ کا اشارہ ہے وہ آگے آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ. آ جاؤ. ہمارا یہ عمل انشاءاللہ مغفرت دلائے گا. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرماوے. اللہ دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو اللہ آسان فرماوے. اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرماوے. اللہ ہماری نسلوں میں دین کے دائیوں کو پیدا فرماوے. یہ جو باہر لوگ گھومتے ہیں یہ بھی اچھی بات نہیں. آ جاؤ. ہمارا اجتماع گھومنے پھرنے والا نہیں ہے. ہمارا اجتماع تو دین کی فکروں کے ساتھ اپنی دینی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دو تین ساتھی ذرا مجمع جوڑ کر سب کو لے کر آ جاؤ اور سب کو مجمع کے ساتھ بٹھا دو. ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں, میرے ہاتھ کے اشارے کو سمجھ کر آگے بڑھ جاؤ. آؤ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور جیسے جسمانی ضرورتوں کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے، ایسے ہماری روحانی ضرورتوں کا انتظام بھی اللہ ہی نے کیا. جس لائن کی جسموں میں ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں رکھی ہے. بھائی دیکھنے کی ضرورت تھی تو اللہ نے آنکھیں رکھی، چلنے کی ضرورت تھی اللہ نے پیر بنائے، کھانے پینے کی لائن کی ضرورت تھی تو بہترین شکل کے اندر مختلف نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، آرام کرنے کے لیے اللہ پاک نے رات کا نظام چلایا، کمانے کے لیے اللہ نے دن کا نظام چلایا، ماں باپ بیوی بچے اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ ہماری تمام ضرورتیں جسمانی ہیں. ہماری روحانی ضرورت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں اتاری، ایسی دعوت کی مبارک محنت کی فضائیں اور اجتماع کو اللہ پاک نے قائم فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہماری روحانی ضرورتیں پوری ہو. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور انسانوں کو ایک بات کا سبق سکھلاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، ایک اکیلے اللہ کو دلوں میں بسا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے. پیدا کرنے والے اللہ ہے، موت دینے والے اللہ ہے، آسمان و زمین کے درمیان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلت کے گھڑے پر اتار دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بنا دے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے، وہ بڑی طاقت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکلوں میں انسانوں کو کامیاب کر دے. اللہ کا نظام ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا. کوئی دنیا کی بلڈنگ بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھتے چلے جاؤ اللہ پاک نے کتنی بہترین شکل کے اندر آسمان کو بنایا ہے، اور جتنی مرتبہ آسمان کو دیکھتے چلے جاؤ گے کبھی بھی آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. ایسے دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہے کہ آدمی جب اس کو دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی اکتائے گا نہیں. ماں باپ کو دیکھتے چلے جاؤ، بولا آدمی کبھی اکتائے گا. بیت اللہ کو دیکھتے چلے جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کو کرتے چلے جاؤ. ایسے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے طور پر قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تم آسمان کو دیکھتے نہیں، کیسے زمین کو اللہ پاک نے بچھایا، کیسے پہاڑوں کو اللہ پاک نے لگایا. اور اللہ پاک کا نظام، اللہ پاک کی طرف سے ہر نبی کی آواز تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، ایک اکیلے اللہ کو دلوں میں بسا لو، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، وہ بغیر ماں کے حوا کو دنیا میں پیدا فرمایا. نظام اللہ پاک کی طرف سے ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ اپنی قدرت کو بتلانا چاہتے ہیں. तीन तीन अंधेरी के बीच के अंदर अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा फरमाया, और फिर अल्लाह पाक इंसानों को खिताब करके कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए लोगो तुम अपनी जिंदगी और अपने जिस्मों को देखते भालते नहीं है। अगर आदमी अपने जिस्मों की तरफ देखेगा तो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। अल्लाह बड़ी ताकतों वाले हैं, कामयाबी की शक्ल में इंसानों को नाकाम कर दे और नाकामी की शक्ल में इंसानों को कामयाब कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ अपनी बीवी और अपने बच्चे को जंगल बयाबान के अंदर छोड़ के आओ। मुल्क शाम आबाद जगह थी, जरखेज है, हर लाइन की पैदावार मौजूद है। अब अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर इब्राहिम अली सलातो वसलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अली सलातो वसलाम को लेके चले, और ऐसी जगह जिसको कुरान यूं कहता है वादी गैर जी ज़रईन, ऐसी जमीन के जिसमें गल्ला उगाने की सलाहियत नहीं। नजर ही आता है कि ये तो आबादी से बर्बादी की तरफ आए और कामयाबी से नाकामी की तरफ आए, लेकिन निजाम किसके हाथ में बोलो, अरे बोलो किसके हाथ में, और पूरी दुनिया का कंट्रोल किसके हाथ में है। वो चाहे तो पत्थरों से ऊंटनी को पैदा कर दे, वो चाहे तो कांटों से गुलाब को पैदा कर दे, वो बड़ी ताकतों वाला है। कुन फयकुन के मालिक है, फ़ालुल लिमा युरीद है, वो दुनिया में जो चाहेंगे वो होगा। अब इब्राहिम अली सलातो वसलाम चले अपनी बीवी और अपने बच्चों को जब छोड़कर जाने लगे, इसलिए कि वहां तो आबादी थी, खाने पीने के असबाब मुहैया थे, फल फ्रूट मौजूद है, और ये ऐसी वादी है कि जहां पानी नहीं, जहां आबादी नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, बल्कि पूरी बस्ती के अंदर कोई आदमी नजर नहीं आता है, और अकेली एक औरत की जात है, एक बच्चा है। ये तमाम असबाब देखने के एतबार से नाकामी है, लेकिन अल्लाह अपने कुदरत को बतलाना चाहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर मुतलक है। जब इब्राहिम अली सलातो वसलाम जाने लगे तो बीवी हजरत हाजरा पूछने लगी, ऐसे लकोदक मैदान के अंदर आप हमें छोड़ करके जाते हो, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अब अल्लाह के अहकामात के ऊपर अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बनाता है। इब्राहिम अली सलातो वसलाम ने इशारा करके फरमाया हां ये अल्लाह का हुक्म है। और याद रखना अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है, अल्लाह के अहकामात इंसानों को बर्बाद करने के लिए, अरे बोलो, नहीं है। जितने भी अल्लाह के अहकामात है, नमाज आबादी के लिए, रोजा आबादी के लिए, जकात आबादी के लिए, हज आबाद करने के लिए, आंखों को झुकाकर चलना आबादी के लिए, मां बाप की फरमा बरदारी आबादी के लिए, जितने अल्लाह के अहकाम है, इन तमाम चीजों के जरिए से अल्लाह पाक इंसानों को आबाद करते। अब इब्राहिम अली सलातो वसलाम ने जब बीवी ने पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम अली सलातो वसलाम ने कहा हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अब एक औरत की जात है, एक बच्चा छोटा सा है, कोई आबादी नहीं, खाने पीने का कोई निजाम नहीं, लेकिन अकेली औरत ने 5000 साल पहले कयामत तक आने वाले इंसानों को दावत देते हुए इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाया इदल लई युज़ईउना, फिर तो अल्लाह पाक हमें जाए और बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर आप छोड़ करके जा रहे, आप कयामत तक के लिए इस औरत की आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया तक पहुंचाते हुए इधर नहीं युज़ैउना, फिर तो अल्लाह पाक हमें जाए और बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है, अल्लाह के अहकामात इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं है। अब माँ और बेटी रह गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, अब जाहिरी बात है भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, और जब बच्चे को प्यास और भूख लगेगी तो मां परेशान हो जाएगी। अरे बोलो, हो जाती है कि नहीं? और जब तक मां अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती और मां अपनी बेटे की जरूरत को पूरी नहीं होती, वहां तक मां को चैन नहीं आता। अल्लाह का एक निजाम है। अब मां कभी सफा की पहाड़ी पर और कभी मरवा की पहाड़ी पर चक्कर लगाती है और तलाश करती है, कहीं परिंदे उड़ते हुए नजर आवे तो मैं पानी को लेकर अपने बच्चे की प्यास को पूरी कर दूं। लेकिन ये सारा निजाम, बोलो, अल्लाह के हुक्मों की मातहती में हो रहा है, और अल्लाह को सब चीजों का इल्म है। अरे बोलो, अल्लाह जानते हैं कि नहीं? हम तमाम को पैदा किया अल्लाह जानते हैं, हमारी जरूरतों को अल्लाह जानते हैं, दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह पाक हर चीज से बाखबर है। हमें अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं है, ये होता है, ये होता है। सारी दुनिया में इस वक्त के अंदर कितने इंसान हैं अल्लाह को मालूम है। सारी दुनिया में कितने माओं के पेट में, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हो, चाहे चरिंदे हो, चाहे इंसानों की शक्ल में हो, इस वक्त के अंदर मादाएं अपने पेटों में जितने बच्चों को लेकर चलती है, अल्लाह पाक हर एक को जानने वाले हैं। कौन कब पैदा होगा, किसको कितनी जरूरत है, कितने पैर, कितने हाथ, कितने खाना, कितना अनाज, कितनी जरूरत है, कितने मकान, फिर दुनिया में आने के बाद कितनी आंटे और कितनी चीजें, ये तमाम चीजें अल्लाह पाक के इल्म में है। बल्कि यूं फरमाया, सारी दुनिया के पैदा करने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने इंसानों की मुकद्दर की रोजी लिख दी है। ये दुनिया में नेक वक्त बनेगा या ये बदबख्त बनेगा, उसकी रोजी कितनी, उसकी उम्र कितनी, वो कौन सी जमीन में मरेगा, इसके माँ बाप कितने, इसके माँ बाप का मामला कैसा होगा, कितनी औलादे होगी, उसको कहाँ अल्लाह पाक रोजी का निजाम चलाएंगे, ये दुनिया में जिंदगी कितना, इसके पेट में क्या है, इसके आंतों में क्या है, उसके दिलो दिमाग की ताकतें कितनी है, ये दुनिया में आकर क्या क्या अमल करेगा, ये दुनिया में कितना सफर करेगा। आज तक जो कुछ हुआ है अल्लाह के इल्म से हुआ है। इस वक्त में जो कुछ होता है एक अकेले अल्लाह ही जानने वाले हैं, और आइंदा जो कुछ होने वाला है अल्लाह पाक सब चीजों का इल्म करने वाला, सब चीजों को जानने वाला है, बड़ी ताकतों वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले गए और एक औरत की जात ने अल्लाह पर एतमाद करते हुए ये जुमला इस्तेमाल फरमाया, इधर लई युज़ैउना, फिर तो अल्लाह पाक हमें जाए और बर्बाद नहीं करेगा, फिर अल्लाह का निजाम चल गया। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए काफी हो जाएंगे। अभी औरत तो चक्कर लगा रही है, कभी मरवा कभी सफा, कभी मरवा कभी सफा, लेकिन निजाम अल्लाह पाक चलाते। अरे बोलो, जमीन से पानी कौन निकालता है, और जमीन से पेट्रोल कौन निकालता है, और जमीन से जो कुछ निकलता है वो तो अल्लाह ही की तरफ से। हाँ, बारिश तो पानी का तो बारिश होती है, लेकिन उसके अलावा जितनी जमीनों के अंदर सोना, चांदी, पेट्रोलियम और जो कुछ रखा है वो तो अल्लाह पाक अपने कुदरत से करते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो रवाना हो गए, माँ परेशान है, बेटा एक जगह लेटा हुआ है, माँ कभी तेजी के साथ दौड़कर कहीं मेरे बच्चे को कोई परिंदा चरिंदा कर उठा न जावे। अब माँ देखती है, और कभी ढलान और नशेब की जगह होती है, माँ थोड़ी सी तेज दौड़ लेती है। ये पूरा माजरा अल्लाह पाक देखने वाले हैं, और फिर अल्लाह का निजाम चला, और फिर अल्लाह पाक ने पानी का चश्मा निकाला, इनकी जुबान के अंदर जम जम पानी रुक जा ये इनकी जुबान के लफ्ज थे। अल्लाह पाक का निजाम ये चला कि पानी का चश्मा जमजम की शक्ल में अल्लाह ने निकाल दिया। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उसको रोकती नहीं अल्लाह ये पानी पूरी दुनिया में पहुंचा देते। तो कामयाबी से नाकामी और नाकामी से कामयाबी और तमाम मसाइल का हल करना एक अकेले अल्लाह ही की ताकत है। अल्लाह पाक का निजाम ये है। हर नबी की आवाज थी या यूहन्नास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो एक अकेले अल्लाह की जात और सिफात का यकीन पैदा कर लो अल्लाह दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बनाएगा। वो बड़ी ताकतों वाला है। अल्लाह पाक की तरफ से दुनिया में निजाम चलेगा। वो जिसको चाहे उसको मालदार बनावे, वो जिसको चाहे उसको गरीब बनावे, वो जिसको चाहे उसको मर्द बनावे, वो जिसको चाहे उसको औरतें बनावे। लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान जमीन की हुकूमत एक अकेले अल्लाह ही की है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर कहते हैं अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको लड़कियां ही लड़कियां पैदा करते। अरे बोलो हमारे गांव में, हमारे खानदान में, हमारे शहर में ऐसे लोग भी होंगे कि जिसकी लड़कियां ही लड़कियां हैं। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं? हर आदमी की तमन्ना यह है कि लड़का पैदा हो, लेकिन मसलिहत को जानने वाला अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसको पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको लड़कियां ही लड़कियां देते। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको लड़के ही लड़के देते, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको लड़के और लड़कियां दोनों देते। अरे बोलो दोनों है कि नहीं? अक्सर घरों में तो ये निजाम होता है कि भाई पांच बच्चे तो दो लड़की तीन लड़के, दो लड़के हैं तो एक लड़की और एक लड़का। और जहां ये होता है अल्लाह पाक अपने कुदरत को बतलाना चाहते हैं। आदमी डॉक्टर साहब को जाकर कहता है डॉक्टर साहब मेरी शादी को 20 साल हो गए और मेरे नाखून में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर औलाद नहीं। महीना दो महीना चार महीना दवा देने के बाद आखिर में डॉक्टर भी यूं कहता है भाई ये तो कुदरत के हाथ में है। तो पूरा निजाम किसके हाथ में बोलो? और जिसको लड़कियां ही लड़कियां देता है वो पूरी कोशिश करता है अल्लाह करे मेरे यहां लड़का पैदा हो, लेकिन कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शयइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। हमारा एक दोस्त था, उसने सुनाया कि मैं हमारे यहां एक आदमी था, अब उसने शादी की। अब अल्लाह का निजाम चला के पहला दूसरा तीसरी चौथी पांचवी 7 लड़कियां पैदा हुई। अरे बोलो कितनी लड़कियां पैदा हुई? अब किसी ने कहा कि भाई दूसरी शादी कर ले। फन के हो माताब लकुम मिनन निसाई मथना वसुला सवरुबा, 2, 3, 4 की इजाजत है तो दूसरी शादी कर ले। अरे बोलो क्या नियत से उसने मशवरा दिया? अरे बोलो लड़का पैदा हो, और उसने भी नियत कर ली कि चलो दूसरी शादी कर लेंगे तो लड़का पैदा होगा, लेकिन ये भूल गया कि कंट्रोल किसके हाथ में बोलो। अब दूसरा निकाह हुआ 8, 9, 10, 11, 4 लड़कियां पैदा हुई। किसी और समझदार ने कहा भाई साहब तीसरा निकाह कर ले। अरे बोलो क्या नियत से उसने राय दी? अरे बोलो, और उसने भी तय कर लिया कि चलो यार निकाह कर लो अल्लाह पाक लड़का दे देवे। अब निजाम तो अल्लाह के हाथ में। तो 12, 13 और 14 3 लड़कियां पैदा हुई। किसी ने कहा चौथी भी कर ले, बोले अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर ये कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरुन, ए लोगो तुम अपनी जिंदगी में और अपने समाज और अपने माशरे में देखते भालते नहीं। हमारी समाज में कितनों को बीमार कर दिया, कितनों को तंदुरुस्ती दे दी, मर्द बनाया औरत, मालदार और गरीब। निजाम तो अल्लाह पाक के हाथ में है। हर नबी की आवाज थी, पहली बुनियादी मेहनत ये है हमारे दिलों का यकीन सही हो जावे, गलत यकीन निकाल करके सही यकीन पैदा हो जावे कि करने वाली जात एक अकेले अल्लाह ही किए। अल्लाह पाक ने हमारी जिंदगी के सामने ऐसी चीजों को पैदा कर दिया, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यती। अल्लाह पाक दुनिया में इंसानों को बतलाते हैं, जानदार से बेजान मखलूक को अल्लाह पैदा करते हैं और बेजान से जानदार मखलूक को अल्लाह पैदा करते हैं। अल्लाह बोलो, मुर्गी क्या है? जानदार। मुर्गी क्या है? जानदार। अब उससे जो अंडा पैदा होगा वो बेजान है, और बेजान अंडे से मुर्गी का बच्चा पैदा होगा वो जानदार है। अल्लाह पाक कहते हैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यती, भाई जानदार है, अल्लाह उससे बेजान को पैदा करेंगे और बेजान मखलूक से अल्लाह पाक जानदार को पैदा करेंगे। लेकिन मैं आपको पूछूं, अरे बोलो, दुनिया में पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अरे बोलो, अगर आपको मुर्गी आई तो बगैर अंडे के मुर्गी कैसे आई? और अगर आप अंडा कहो तो बगैर मुर्गी के अंडा कैसे आया? बोलो, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अरे भाई, पहले आदम अली सलात व सलाम आए और उसके बाद नस्ले इंसानी चली, ऐसे पहले मुर्गी आई, पहले शेर आया, पहले हाथी आया। दुनिया के हर मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसके जोड़े को बनाया, फिर अल्लाह पाक ने दुनिया का निजाम चलाया। लेकिन हर चीज का पैदा करने वाला एक अकेले अल्लाह ही है, अल्लाह का निजाम ये है। दोस्तों बुजुर्गों, पहले दिन का हमारा सबक ये है, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत। अल्लाह पाक की तरफ से ईमान लाया मैं अल्लाह पर, अल्लाह की जात और सिफात पर, आसमानी किताबों पर। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। इसके जितने वादे हैं यकीनी, इस पर जितनी वादे हैं यकीनी, कौमों के उरूज और जवाल के किस्से हैं वो यकीनी, उसमें जन्नत और जहन्नम के तस्करे यकीनी, उसमें जितने अल्लाह के अहकामात है वो तमाम चीजें यकीनी है। इंसानों की आंखें धोखा खा सकती है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात कभी भी गलत। अरे बोलो, मसलन मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अल्लाह पाक ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह फरमाते हम सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। ये अल्लाह का कुरान पाक का फैसला है। हमें ये नजर आएगा, एक आदमी किसी को 100 रुपए सूद पर दिए, महीने के बाद उसको यूं कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर, और 10% का सूद है तो एक महीने के बाद कितने रुपए वापस आएंगे? 100 रुपए दिए थे और 10% तो एक महीने के बाद कितने वापस आएंगे? 110। कितने आएंगे? अरे बोलो, 110। अब माल बढ़ा के कम हुआ? अरे बोलो, बढ़ा। और कुरान यूं कहता है हम सूद को मिटाएंगे। हमारी आंखें देखेगी कि माल बढ़ गया और कुरान की जुबान ये कहती है कि हम सूद को मिटाएंगे। अच्छा, आगे दूसरी, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, हम सदकात को बढ़ाएंगे। एक आदमी के जेब में 100 रुपये हैं और उसने 10 रुपया किसी को सदका दिया, अब बोलो उसके जेब में कितने रहे? 90। कितने रहे? माल कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अरे बोलो, कम हुआ। और कुरान यूं क्या कहता है, व युर्बी सदकात, हम सदकात को बढ़ाएंगे। हमारी आंखें धोखा खा रही। भाई नमाज पढ़ते हैं तो हमको नजर ही आता है कि नमाज की वजह से आधा घंटा दुकान बंद हो गई तो हमारे एक दो ग्राहक चले गए, हमको नजर में यूं आता है कि हमारा माली नुकसान हुआ, और कुरान यूं कहता है कि नमाज की बरकत से लपक रोजी में बरकत देगा। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबी जी, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, आप खुद भी पाबंद रहिए, हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते बल्कि रोजी तो हम देंगे। मुफस्सरीन ने लिखा है इसमें इशारा यह है कि नमाज की बरकत से अल्लाह पाक रोजी में बरकत देगा। एक और मिसाल मैं आपको दे दूं। दो दोस्त थे, दोनों की उम्र 20 साल की और दोनों का वजन 40 किलो। अल्लाह का करना कि एक दोस्त इंग्लैंड गया, किसी दोस्त ने उसको बुलाया कि तू यहां आ जा। अब एक हिंदुस्तान में रहा नंदासन में और एक इंग्लैंड गया। 2 साल के बाद इंग्लैंड का दोस्त तो वापस आया। अब बोलो दोनों की उम्र कितनी हो गई? 22 साल। अब ये हिंदुस्तान का दोस्त अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर गया उसको लेने के लिए, और उसने देखा कि जब यहां से गया था तो इसका वजन 40 किलो था। कितना था? अब ये जो लेने के लिए गया उसका वजन तो 40 का 40 रहा, लेकिन वो सामने वाला जो 2 साल इंग्लैंड जाकर आया उसका वजन डबल हो गया। कितने किलो हो गया? अरे बोलो। अब ये देखकर कहने लगा, माशाल्लाह वहां की आबो हवा तेरे को रास आ गई और तू कितना मोटा ताजा हो गया और तेरा वजन कितना अच्छा बढ़ गया। अब ये हिंदुस्तान का रहने वाला दोस्त उसको कहता है कि माशाल्लाह तेरा वजन बढ़ गया, तेरे को आबो हवा रास आ गई और तू फरबा और मोटा हो गया, लेकिन वो आंखों से रोने लगा। अब ये दोस्त पूछने लगा, अरे मेरे भाई रोने की क्या वजह है? अब उसने राज खोला और उसने यूं कहा कि भाई तू जिसको तंदुरुस्ती समझता है वो तंदुरुस्ती नहीं है बल्कि ये तो मेरे को हाथी पगा की बीमारी हो गई। अरे बोलो, होती है ना, आदमी का बदन फूलता रहता है, ये तंदुरुस्ती नहीं है, ये इसका जो वजन बढ़ा है वो उसकी बीमारी की वजह से बढ़ा है। लेकिन देखने वाला आदमी क्या कहता है कि माशाल्लाह कितना ताजा मोटा हो गए। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फैसला कर दिया, यमहकुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाएंगे। अगर सूदी कारोबार करने के बावजूद भी अगर एक की दो दुकान, एक की दो गाड़ी, एक की दो ट्रकें अगर ये बढ़ती चली जा रही है तो देखने वाला यूं समझता है कि माशाल्लाह कितना माल बढ़ता है। लेकिन उसको जाकर पूछो, जैसे 80 किलो वाला कहने लगा और आंखों से रोने लगा, भाई साहब ये मेरा वजन बढ़ा नहीं है बल्कि बीमारी की वजह से मेरा बदन मोटा हो गया है, ये तंदुरुस्ती, ये तेरा धोखा है, तू जिसको तंदुरुस्ती समझता है ये तंदुरुस्ती नहीं है बल्कि बीमारी है। लेकिन आदमी धोखा खा लेता है। लेकिन कुरान पाक जो कहता है, इसीलिए कुरान की पहली आयत दालिकल किताब ला रईब फी, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। अब उसकी ईमान की ताकत और दिलों की आंखों के जरिए से ये कहेगा कि नहीं, मेरे अल्लाह की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। इंसानों का धोखा, इंसानों की आंखें धोखा खा सकती है, इंसानों का तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात कभी भी गलत नहीं होगी। और आगे अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, वयुर्बी सदकात, हम सदकात को बढ़ाते हैं। हालांकि नजर क्या आया, जेब में से 10 रुपए गए, अरे बोलो माल कम हुआ कि ज्यादा हुआ? आंखें कहेगी कम हुआ और दिल की आंख और ईमान की ताकत कहेगी उसका माल बढ़ गया। क्या हो गया बोलो? नजर ये आएगा कि 90 रुपये हैं, और कुरान यूं कहता है वयुरबी सदकात, हम सदकात को बढ़ाएंगे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। नजर ये आता है कि सच बोलेंगे तो कम मुनाफा मिलेगा और झूठ बोलेंगे तो ज्यादा मिलेगा। अरे बोलो यही है ना। एक आदमी ने कहा कि 1 रुपये का रुमाल है, अगर उसने सच कहा तो कोई भाई 1.25 रुपया ले लेना, लेकिन अगर उसने झूठ बोलकर यूं कहा माल तो 1 रुपये का है और उसने यूं कहा कि 2 रुपये का है, तो सामने वाला कहेगा अच्छा 2.25 ले ले। अरे बोलो सच बोलेंगे तो 54 मिलेगी और झूठ बोलेंगे तो 1.25 रुपया मिला। यह हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या है, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। अब जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की बातों का यकीन है वो तो कहेगा कि नहीं, सच के अंदर 54 थी लेकिन वो मेरी नजात का जरिया है, और झूठ में 1.25 रुपये का नफा नजर आता है लेकिन मेरे नबी का फरमान ये है वल किज़्बु युहलिक, झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं हम इंसानों की मदद करेंगे, लेकिन उसके जरिए के सबर और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवाओ। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगेंगे, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन आदमी क्या कहता है, भाई नमाज तो मैं नहीं पढूं और अल्लाह की मदद आ जावे, बोलो ऐसा हो सकता है? अब अल्लाह पाक ने कुरान पाक के ने फरमाया वयुरबी सदकात, हम सदकात को बढ़ाएंगे। नजर यह आता है कि जेब में 100 रुपये थे, 10 रुपये सदका दिया, अब 90 रुपये बाकी रह गए, आंखें यह कहेगी कि माल कम हो गया, और ईमान की ताकत और अल्लाह की खबर यह कहती है कि इसका माल बढ़ गया। अब बोलो इंसानों की बात सही होगी या अल्लाह उसके रसूल की बात सही होगी? अल्लाह उसके रसूल। यह ईमान की मेहनत के जरिए से दोस्तों बुजुर्गों, अमाल पर नफा और बदअमाली का नुकसान, नमाज पर अल्लाह मसाइल को हल करेंगे और बेनमाजी के ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से नहुसतें आएगी, जकात के ऊपर अल्लाह माल की हिफाजत करेंगे, और जो जकात नहीं देता है ये जकात अल्लाह का हुक्म है, अब उसके अहकाम को तोड़ने पर अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत को बर्बाद करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को 6 रुपये देकर आए, हजरत फातिमा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और जन्नत की औरतों की सरदार है, 6 रुपये दिए और इनका अपने घर के खर्च करने में इस्तेमाल कर लिया। एक अल्लाह के नाम पर साइल आया और उसने यूं कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अपने बेटे हसन या हुसैन दोनों में से किसी एक को कहा जाओ अम्मी से 6 रुपये लाकर इस साइल को दे दो। अब घर में 6 रुपये ही है और ये भी साहिल को दे दिए, अब बोलो घर में कुछ रहा? आंखें यूं कहेगी कि कुछ भी नहीं, और कुरान यूं कहता है हम सदके को बढ़ाएंगे। अब 6 रुपये लाकर साहिल को दे दिए, लेकिन निजाम अल्लाह पाक चलाते हैं, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक लेकर आएगा, जो एक लगाएगा, एक के 10 अल्लाह का वादा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु, जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाता है अल्लाह उसका बदला देंगे। अरे बोलो रोजी का देने वाला कौन है? अल्लाह पाक। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और एक आदमी आकर कहने लगा ए अली ये सवारी बेचनी आप खरीदोगे? अरे बोलो ये सवारी को भेजने वाला कौन था? अल्लाह पाक। हजरत अली ने कहा भाई ठीक है, कितना? बोले 140 रुपये। अच्छा लाओ, 2 दिन के बाद पैसे ले जाना। अब ये अल्लाह की तरफ से निजाम ये चला कि आदमी उधार तो माल ले सकता है। अच्छा भाई 2 दिन के वादे से ये सवारी ले ली। थोड़ी देर हुई कि एक आदमी आकर पूछने लगा, ए अली ये सवारी बेचोगे? वो तो बेचने के लिए ही थी। हाँ भाई बेचेंगे। कितने? बोले 200 रुपये। अच्छा लाओ, लो ये 200 रुपये। अब जिससे खरीदा उससे 140 रुपये दे दिए। अब बोलो कितने बचे? अरे बोलो कितने बचे? ये हयातुस सहाबा में ये वाक्या मौजूद है। अब 60 रुपये अपनी बीवी हजरत फातिमा को देकर यूं कहा कि तूने 6 रुपये खर्च किए थे, अल्लाह पाक ने 6 के बदले में कितने दिए? वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाता है अल्लाह पाक उसका बदला अता फरमाते। जब आदमी अल्लाह के नाम पर सदका देगा अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात। हम सूद को मिटाएंगे और हम सदके को बढ़ाएंगे। लेकिन इंसानों की आंखें क्या देखती है बोलो? कि सूदी कारोबार से माल बढ़ेगा और सदका देंगे तो माल कम होगा। ये इंसानों की आंखें और इंसानों का तजर्बा है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात ये है। इसीलिए सहाबा किराम फरमाया करते थे, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। हम पहले ईमान को सीखते थे उसके बाद कुरान पाक को सीखते। ईमान तो ये है, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। ईमान लाया मैं आसमानी किताबों पर। ये हमारी रूहानी जरूरतें हैं। अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जितने अल्लाह पाक के वादे हैं अल्लाह पाक तमाम वादे को पूरा करें। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बहुत मालदार थे और मक्के में लोगों को सूद पर रुपया दिया करते थे। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक में सूद की हुरमत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वदरु मा बक़िया मिनर रिबा। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सूदी कारोबार को बंद कर दो। किसी ने जाकर यूं कहा, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के सूद को माफ कर दिया। भाई मेरे चचा पर जितना सूद तुम पर चढ़ा है ये सब के सब माफ। किसी ने जाकर हजरत अब्बास से कहा, ए अब्बास तुम तो मालदारों की फेरी से निकलकर गरीब बन गए। अरे भाई क्या बात हो गई? बोले तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं, व्याज जिसको गुजराती में कहते। अब लाखों रुपए सूद आता था और इन तमाम चीजों को माफ कर दिया तो बोलो मालदारों की फेरिस से बजाहिर आंखें यूं कहेगी अब तो ये गरीब हो जाएंगे। अरे बोलो होता है कि नहीं? हजरत अब्बास को जाकर किसी ने यूं कहा, ए अब्बास तुम्हारे भतीजे ने सूद को माफ कर दिया। भाई क्यों ऐसा हुआ? बोले अल्लाह का हुक्म आया। देखो अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। अभी अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वदरु मा बक़िया मिनर रिबा। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म है और अब तक तो जो सूदी कारोबार होता था आज अल्लाह का हुक्म हो गया, अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया। हजरत अब्बास ने कहा कि ऐसी बात है? अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सूद को माफ कर दिया और हजरत अब्बास को जब पता चल गया कि अल्लाह पाक ने सूदी कारोबार को छोड़ने का हुक्म दे दिया, हजरत अब्बास ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी कैपिटल को भी छोड़ देता हूं। अरे भाई जिसका लाखों रुपए सूद आता होगा उसकी कैपिटल तो करोड़ों रुपये होगी ना। अब लोग कहने लगे कि अब्बास तुम मालदारों की फेरिस्त से निकलकर बिल्कुल आखिरी। अरे होता है ना, एक तो मालदारों में टॉप 10 और एक तो गरीबी के अंदर सबसे नीचे, कुछ दिन पहले अखबार में है एक एक मुल्क के कि भाई फला मुल्क दुनिया में एक नंबर का मालदार और ये फला मुल्क दुनिया में आखिरी नंबर का गरीब। तो लोग कहने लगे अब्बास तुम तो गरीबों की फहरिस्त में तो दाखिल हो गए लेकिन सबसे आखिर में तुम्हारा नंबर है कि तुमने सूद को भी माफ कर दिया और उसकी कैपिटल को भी छोड़ दी। लेकिन कौन सी हुक्म की? अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर छोड़ा था। और अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए है, इंसानों को बर्बाद करने के लिए बोलो नहीं है। फिर नमाज है, फिर रोजा है, फिर जकात है, फिर माँ बाप का, यहां तक कि कुरान ने इंसानों को चलने का तरीका सिखलाया। वइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्द हवना, अल्लाह के नेक बंदे जमीन में नरमी के साथ चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते। वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ के मत चल। एक आदमी घर में दाखिल हो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलु बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु, ईमान वालों को अल्लाह ने कहा ऐसे अंधाधुन घर में दाखिल मत हो बल्कि इजाजत लो, सलाम करो। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी घर में दाखिल होते हुए सलाम करेगा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा और चौथा कलमा पढ़ेगा या कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ेगा, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उनकी घर की बेबरकती को खत्म कर देगा। अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इंसानों को आबाद करने के लिए, जितने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, अस्सिद्क युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। लेकिन बोलो इंसानों को नजर क्या आता है? झूठ बोलेंगे तो कमाएंगे। अरे बोलो झूठ बोलेंगे तो कमाएंगे और सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे। ये हमारी इंसानों की जुबान का नारा है और प्यारे नबी की हदीस ये है अस्सिद्क युंजी, इंसान सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटी सी उम्र है और अपने इलाके में इल्म हासिल करने के बाद अब दूसरे आगे पढ़ाई के लिए जा रहे। माँ ने इनको 40 रुपये दिए और आस्तीन में सी के रख दिए और अपने बेटे की तरबियत करने के बाद यूं कहा, बेटे कभी झूठ मत बोलना। और प्यारे नबी की हदीस सुनाई अस्सिद्क युंजी, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। अब माए जब बच्चों की तरबियत करे और माँ जब दीनदार बनकर अपने बच्चों को दीनदार बनावे तो बोलो बच्चा दीनदार बनेगा कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अनफुसकुम वहलिकुम नारा, ऐमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब? हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं इनको दीन सिखाओ। आज हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखलाते, हमारे घरों के अंदर दीनी मिजाज नहीं है। अल्लाह के अहकाम, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, घरों में सादगी, घरों में हया और घरों के अंदर अल्लाह के दीन के मुजागरे और मशवरे और अल्लाह के दीन के तकाजे पर चलने के लिए कुर्बानी। ये दोस्तों बुजुर्गों हमारी घर की तालीम की बरकत से अल्लाह पाक ये निज़ाम कायम करेंगे। जब एक छोटे से बच्चे के सामने 6 नंबर के मुजागरा करके हम अगर ये कहेंगे बेटे अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता है, जब छोटा सा बच्चा इस बात को बार बार बोलेगा, बोलो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में दाखिल करेगा कि नहीं? अब माँ ने उसको नसीहत की, बेटे झूठ मत बोलना। और प्यारे नबी की हदीस सुनाई और हदीस की अजमत दिलों में अल्लाह पाक की तरफ से हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनाया है और कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए जिस मसले का हल तलाश करना है हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में अल्लाह ने रखा है। अब बच्चा चला, पहले पहले तो गाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, पर ये कहां जा रहे? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ऐसा करते हो? एक तो साल में एक मर्तबा, और उस हाँ माशाल्लाह। अब नियत करो आखिर तक हम सब बैठेंगे। अरे बैठोगे इंशाल्लाह? क्या बयान पूरा कर दे वे? अरे बोलो चला वे, तो भाई बैठोगे सब इंशाल्लाह। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस सुना दी, अस्सिद्क युंजी वल किज़्ब युली। अब ये काफिला तो ऊंटों पर जाता था, 5-15-25 आदमी मिलकर जाते थे, अकेला कोई सफर नहीं करता था। और कभी दिन में चलते थे तो रात को कयाम किया, कभी रात को चले तो दिन में पड़ाव डालते थे, अपनी जरूरत, खाना पीना आराम। अब ये काफिला जब चला है और चलते चलते आगे पहुंचकर किसी जगह मकाम किया है और पड़ाव डाला है, तो डाकुओं की जमात आई और सबको लूट लिया। अरे भाई होता है कि नहीं? कभी कभी ट्रेनों में भी होता है कि नहीं? अभी एक डाकू ने पूछा इस बच्चे से, बेटे तेरे पास क्या है? अब बोलो मां की तरबियत क्या थी? बेटे सच बोलना, और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, अस्सिद्क युंजी, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। अब एक डाकू ने पूछा बेटे तेरे पास क्या है? अब ये समझेगी इसके पास क्या होगा, लेकिन चलते चलते चलो पूछ लो। तो चूंकि माँ की नसीहत है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और माँ ने घर की तालीम के जरिए से अपने बच्चों की तरबियत का निजाम किया है। आज माँ बाप अपने बच्चों से परेशान इसके लिए है कि दीनी लाइन की तरबियत नहीं हुई, अभी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन घर की तालीम नहीं, 6 नंबर के मुजाकरे नहीं, आने वाली जमातों की नुसरत नहीं, मस्जिदों में बैठकर तालीम के हलके में नहीं। अब ये बच्चे बचपन से ही अगर और तरीके से तरबियत पाएंगे, बोलो उनकी जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल की बात आएगी? अब वो तो घर की तालीम हो रही है, माँ की तरबियत हो रही है, माँ ने उसको इस बात का सबक सिखलाया है और माँ ने उसके दिल में इस बात के अजमत को डाला है कि मेरे नबी का फरमान ये है, जब आदमी सच बोलेगा अल्लाह पाक उसको नजात देंगे। अब बेटे ने कह दिया, जब डाकू ने पूछा क्या है, बोले 40 रुपये है। अच्छा कहाँ है? अब भी झूठ नहीं कहा, बल्कि यूं कहा कि मेरी आस्तीन में सीके मेरी माँ ने दिए है। बस इस बच्चाई की सच्चाई थी, निजाम तो अल्लाह बदलेगा, इंसानों के दिल तो अल्लाह के हाथ में है, हम दुनिया के हालात से मुतासिर ना हो कि चलो यहां यूं कहेंगे, और नहीं, अल्लाह पाक ने कयामत तक के लिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है, और आप जो कुछ फरमाएंगे वो यकीनी बात है। हाँ, मदीना मुनव्वरा में एक चूंकि बागात है, खजूर के बागात, बोलो कहां है? मदीना मुनव्वरा में एक यतीम बच्चा, उसका भी एक बाग है खजूर का। अब उसके करीब में एक दूसरे का बाग है, तो बाजे मर्तबा हवाओं की वजह से ये खजूरें नीचे गिर जाती है। अरे बोलो गिरती है कि नहीं? अब ये बच्चा समझ में कि भाई ये खजूर मेरी है या मेरे पड़ोसी की है, और बगैर इजाजत के किसी चीज को इस्तेमाल करना, बोलो इसकी गुंजाइश नहीं। अब उसने सोचा कि चलो मैं दीवार बना दूं ताकि उसकी और मेरी हद मुतय्यन हो जावे। अब उसने दीवार बनानी शुरू की, तो दरमियान के अंदर एक दरख्त ऐसा आता था, अगर ये खरीद लेता है तो इसकी दीवार सही हो जाती, क्योंकि वो पड़ोसी की हद में आता था। इस यतीम बच्चे ने पड़ोसी को जाकर यूं कहा, भाई मैं अपनी दीवार बना रहा हूं और एक दरख्त बीच में आता है, अगर वो दरख्त मेरे को दे दे ताकि मेरी दीवार दरमियान में सही बन जावे। पड़ोसी ने कहा नहीं। अच्छा भाई कीमत ले ले, बोले नहीं जा। अरे भाई साहब मेरी दीवार सही नहीं होती है, बोले वो तेरा मसला है। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है,
इस यतीम बच्चे ने जाकर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी पूरी तफसील बयान कर दी। ऐ अल्लाह के नबी, कुछ खजूरें गिर जाती है, पता नहीं चलता मेरी है कि पड़ोसी की है, और बगैर इजाजत के खाने की इजाजत नहीं है। मैं दरमियान में एक दीवार बना रहा हूँ, पड़ोसी का एक दरख्त मेरे दीवार के दरमियान में आता है। मैंने उससे कहा तो उसने मना कर दिया, मैंने कहा कीमत ले ले, उसने मना कर दिया। आप कोई फैसला फरमा दे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनको बुला कर लाओ। अब ये बुला कर लाए। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? अब वो यतीम बच्चे ने पूरी बात की। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त को इनको दे दे। बोले, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, कीमत ले ले। बोले, नहीं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इस यतीम बच्चे को ये एक दरख्त देगा, मैं तेरे को जन्नत में दरख्त खजूर का दिलाऊंगा। अब उनकी तो समझ में नहीं आई, उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन दूसरे एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं खरीद करके ये दरख्त यतीम बच्चे को दिला दूं, तो क्या मेरे को भी अल्लाह पाक जन्नत में खजूर का दरख्त देंगे? अब देखो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन। ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से इसी बात को सीखना है कि अल्लाह पाक ने जो कुछ कहा है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है, उसका यकीन हमारे दिलों में उतरे। जब सिला रहमी करेंगे, अल्लाह पाक दो नेमत देगा, एक तो माल में इजाफा होगा, एक अल्लाह पाक उम्र में बरकत देगा। एक आदमी वजू करके घर से आया, मस्जिद की तरफ आया, गोया के एहराम बांध कर उम्र की नीयत से चला। एक आदमी किसी बीमार की आदत करेगा, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। एक आदमी 25 मर्तबा किसी को सलाम करे या सलाम का जवाब देवे, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ये देंगे हर चीज को। लेकिन ये कब होगा? जब ये मजमा तालीम के हलके में बैठेगा, नमाज पर ये मिलेगा, रोजे पर ये मिलेगा, जकात पर ये मिलेगा, पहली सब पर ये मिलेगा, घर से वजू करने पर ये मिलेगा, मस्जिद में नमाज के इंतजार करने पर अल्लाह पाक नमाज का सवाब देंगे। फिर नमाज के बाद बावजूद बैठा रहा, फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। ये तमाम बातें हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और जो आपके तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर कोई बेहतरीन नमूना हो सकता है तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत हो सकती है। अब वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु जाकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं उस दरख्त को खरीद करके उस यतीम को दे दूं, तो क्या मेरे लिए भी वो बशारत है कि अल्लाह पाक जन्नत में खजूर का दरख्त मेरे को भी देंगे? हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अब देखो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन। सहाबाए किराम जो फरमाया करते थे, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने पहले ईमान को सीखा, उसके बाद कुरान पाक को सीखा। ये ईमान के सीखने की राहें हैं, और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है। रूहानी असबाब पर इज्तिमा, आसमानी किताबें, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा है। क्यों? ताकि हमारी तुम्हारी आखिरत की जिंदगी बन जावे। टेम्परेरी 60-70-80 साल की जिंदगी, अगर उसमें हमने अपनी आखिरत को बना लिया, हमेशा हमेशा 2-5 साल नहीं, 2-5 हजार साल नहीं, 200-500 करोड़ साल नहीं, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के आखिरत की जिंदगी को अल्लाह बनाएगा। अब वो जो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तो वो उस बाग के मालिक के पास गए और यूं कहा कि मेरे को जानता है? बोले, हाँ। अच्छा, मेरा बाग तेरे को पता है? बोले, हाँ। मेरे बाग में 600 खजूर के दरख्त है। बोले, जानता है? बोले, हाँ, मशहूर है तुम्हारा बाग तो, और तुम्हारे बाग की खजूरें बहुत कीमती, मदीने में सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। बोले, मैं तेरे साथ सौदा करने के लिए आया हूं कि वो एक दरख्त जो यतीम की दीवार बनाने के दरमियान में आड़े आ रहा है, तू वो एक दरख्त मेरे को दे दे, उसके बदले में मैं तेरे को अपना बाग जिसमें 600 दरख्त है, जिसमें मकान भी है और जिसमें कुआ और पानी का इंतजाम भी है, मैं एक खजूर के दरख्त के बदले में अपना 600 दरख्त वाला बाग देने के लिए तैयार हूं। आखिरत का यकीन है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है, कुरान और हदीस की बात पर पूरा यकीन है, तो एक बाग खरीद करके 600 बाग दे, 600 दरख्त देने के लिए तैयार है, और उसके बदले में अल्लाह पाक की तरफ से जन्नत में खजूर का दरख्त। अरे भाई, जब अल्लाह पाक जन्नत में खजूर का दरख्त देंगे तो बोले इनकी जन्नत पक्की हो जाएगी कि नहीं? अब ये यकीन है आखिरत का। अब उसने कहा, और जिसका दरख्त है अपने दाएं बाएं, अरे भाई सुनते हो ये क्या कहता है? इसलिए कि यकीन में आने वाली बात नहीं है, एक दरख्त के बदले में 2 देवे, 5 देवे, 10 देवे, लेकिन एक के बदले में 600 दरख्त। लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर है, यकीन कुरान पाक की आयत पर है। अरे मैंने आपको कहा ना, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह पाक सूद को मिटाते हैं और अल्लाह पाक सदकात को बोलो बढ़ाते हैं। हमारी आंखें यूं देखेगी कि भाई सूद की वजह से हमारा माल बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन कुरान यूं कहता है हम सूद को मिटाएंगे। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने क्या ऐलान कर दिया, मेरे भतीजे ने सूद को माफ कर दिया है और मैं तो कैपिटल को भी माफ कर देता हूं। तो लोगों की निगाहें क्या देखेगी, ये तो गरीब हो गए, बल्कि गुरबत में सबसे आखिर में इनका नंबर आएगा, लेकिन अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए। कहते हैं कि हजरत अब्बास के 11 या 12 बेटे, एक बेटा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत को पसंद करके एक मर्तबा दुआ दे दी, अल्लाह पाक तेरे को दीन की समझ अता फरमावे। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में बहुत बड़े मुफस्सिर बन गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, बहुत बड़े फकीह बन गए, और लोग अपनी रूहानी इल्म की प्यास बुझाने के लिए इनके घर आ जाया करते थे, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10000, और फजर से लेकर जोहर तक इनके यहाँ कुरान की तफसील, मसाइल, हदीसें, अब उसका दर्स होता था। इनके दूसरे बेटे फजल इब्ने अब्बास ये करीब में रहते थे, और जब ये मजमा 11-12 बजे इल्म को हासिल करके छूटता था तो फजल इब्ने अब्बास, जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, वो दस्तरखान लगाकर आने वाले मजमे को यूं कहते थे, तुमने अपनी रूहानी प्यास और अपनी रूहानी जरूरत को मेरे भाई के यहाँ पूरी कर दी, अब तुम्हारी जिस्मानी और बदनी जरूरत का इंतजाम है, और सबको खाना खिलाते, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10000 मजमे को खाना खिलाते, और एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन जमात आती है तो खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि रोजाना खिलाते हैं, और खिलाते चले गए, खिलाते चले गए। अरे भाई साहब क्या हो गया, इनके वालिद तो गरीब हो चुके थे, और सूद को भी और कैपिटल को भी माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म इंसानों को आबाद करने के लिए है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर अपने सूदी कारोबार को खत्म कर दिया। अल्लाह पाक ने इतनी बरकतों का दरवाजा खोल दिया, एक बेटा आलिम है, एक बेटा लोगों को दर्स देता है, और जब ये सबक छूट करके ये मजमा जब बाहर निकलता है, इनके दूसरे बेटे फजल इब्न अब्बास दस्तरखान लगाते हैं, और 2-5 हजार आदमी को, कभी 25 हजार का मजमा अभी इनको खिलाते चले गए। अरे भाई ये बरकतें किसकी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का नतीजा है। तो निजाम तो कौन चलाएगा बोलो? लेकिन अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करने के लिए। हमारे सूरत जिले में एक बहुत बड़े सखी थे, जब भी कोई आवे उसका मसला हल कर देवे। अरे बोले होता है ना भाई, मेरी बच्ची की शादी, अच्छा ले जाओ, मेरा बेटा बीमार है, अच्छा ले जाओ, मेरे बच्चे को स्कूल के एडमिशन में इतनी, अच्छा ले जाओ, लेकिन दुनिया की हर चीज लिमिटेड है, दुनिया की हर चीज बोलो, अरे बोलो, लिमिटेड, और आखिरत की हर चीज अनलिमिटेड। दुनिया की हर चीज लिमिटेड, यहां की जिंदगी भी बोलो, यहां की भूख, यहां की प्यास, हर चीज लिमिटेड। तो भाई सखावत भी आदमी करता 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 एक मौका ही आ जाता है कि फिर आदमी कहता है भाई माफ करो। अरे बोला आपके वहां बोलते, हमारे सूरत में तो कहते, आपके वहां कहते, आप तो सब जुनैद बगदादी होने, आपके वहां तो ऐसा लफ्ज नहीं निकलता होगा कि भाई देते देते भाई। अब वो सेठ साहब तो ऐसे थे कि भाई देते देते फिर एक मौका आ जाता है कि बस बहुत हो गया। अरे बोलो होता है कि नहीं, कितना भी अच्छा खाना पका हो लेकिन आदमी की भूख नहीं हो भाई, एक लुकमा तो खा लो। बोले लिमिटेड जिंदगी में हर चीज लिमिटेड है, यहाँ तो एक लुकमा भी नहीं खाएंगे, लेकिन आखिरत की अनलिमिटेड जिंदगी के अंदर 80,000 खादिम, हर खादिम के हाथ में 4 प्लेटें, 3,20,000 प्लेटें एक साथ आदमी खा लेगा, खुशबूदार नकार के जरिए से अल्लाह उसके खाने को हजम कर देगा। अब एक साहिल उसके घर पर आकर बैठ गया, दूसरे फकीर ने कहा कि भाई यहां क्यों बैठा है, ये तो मालदार और सखी का घर है, यहां तो हर एक की जरूरत और सवाल पूरा कर दिया जाता है। उसने कहा भाई सेठ साहब नाराज हो गए, और मैंने कहा भाई 1 रुपये का सवाल है, तो इन्होंने कहा भाई नहीं बहुत हो गया जा माफ कर। तो बोले मैं भी जिद करके बैठ गया। अरे बोलो बाजे सवाल ही कैसे होते हैं, अरे बोलो नहीं यार, जिद्दी कैसे होते हैं कि लिए बगैर जाएंगे नहीं। आज हमारी भी ये नीयत है कि इंशाल्लाह तुम्हारे हर घर से एक आदमी को लेना है। अरे दोगे ने इंशाल्लाह, अरे दोगे ने, कौन नियत करता है देंगे, जरा हाथ उठाओ ने, पूरा हाथ उठाओ ने, और सभी उठाओ, इंशाल्लाह सबके घर से एक एक आदमी देना है। अब वो फकीर ने कहा कि तेरा मसला हल हो जावे, अगर तेरे 1 रुपये का सवाल है, अगर तेरे 1 रुपये का सवाल हल हो जावे तो। बोले मैं तो चला जाऊंगा। तो दूसरे वाले फकीर ने उसको 1 रुपया दिया और इसको कहा चल। तो वो पहले वाला फकीर तो चला गया और उसकी जगह पर कौन बैठ गया बोलो, अरे बोलो, ये दूसरा फकीर बैठ गया, इसलिए कि उसने भी तो 1 रुपया लगाया है। देखो अल्लाह पाक का वादा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु, जो अल्लाह के नाम पर लगाता है अल्लाह पाक उसको बदला अता फरमाते। और अल्लाह का वादा सच है, अल्लाह का वादा कभी गलत। वमन असदकु मिनल्लाह कीला वमन असदकु मिनल्लाह हदीसा, अल्लाह से सच कहने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो अपनी जो बात चल रही थी वो 600 दरख्त वाली, उसने यूं कहा कि अगर तू एक दरख्त जो यतीम की दीवार बनाने के दरमियान में है, अगर तू एक दरख्त दे दे, मैं उसके बदले में कितने दरख्त दूंगा, अरे बोलो 600, और उसमें मकान भी है और कुआं भी है। तो उसके कान खड़े हो गए और उसने अपने दाएं बाएं वालों को कहा, अरे भाई साहब सुनते हो ये क्या कहता है, एक के बदले में 600 दरख्त। अच्छा भाई फिर से कहो फिर से कहो। लेकिन उनको आखिरत का यकीन है, अरे बोलो किसका यकीन है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है, एक दरख्त के बदले में अल्लाह पाक जन्नत का दरख्त देंगे, और जिसको जन्नत का दरख्त मिलेगा उसकी जन्नत तो पक्की हो जाएगी कि नहीं, अरे बोलो, अल्लाह का निजाम है। जैसे वो डाकू जब वो आया और उसने बच्चे को पूछा, अरे भाई साहब तेरे पास क्या है, तो बोलो बच्चे ने क्या कहा, 40 रुपये, कहाँ है, बोले यहां मेरी माँ ने सीके दिए। अब डाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक छोटा सा बच्चा और वो भी सच्चाई का सबक। अब वो उठाकर बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरी कारगुजारी सुनाई।
कि मैंने इसको लूटा, ये लूटा। चलते चलते बच्चे को मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अब इससे तो क्या लेना। लेकिन बच्चे ने सच्चाई का सबक सिखलाते हुए यूं कहा कि मेरे पास 40 रुपये है, मेरी माँ की नसीहत है, बेटे सच बोलना। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। सरदार ने कहा देखो हमारे नबी की बात, एक सच्चाई का सबक सिखलाने वाला बच्चा, इसके अकेले की नजात नहीं है। अगर ये मुसलमान और ईमान वाला दुनिया में सच्चाई का सबक सिखलाएगा, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निजाम को बदलेगा। अब सरदार ने सुना तो सरदार की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा एक छोटा सा बच्चा सच्चाई का सबक देवे और प्यारे नबी की हदीस पर अमल करे और हम इतने बड़े बालिग हो गए और अल्लाह उसके रसूल की बातों को करने वाले और कलमा पढ़ने वाले हम भी ऐसा गलत काम करें। बोले आज से मैं तौबा कर लेता हूं, अब ये डाका जनी तुमको जो करना हो कर लो। तो कहने लगे इनके साथी के सरदार अगर आप तौबा करोगे हम भी तौबा करेंगे। अब जितने डाकुओं की जमात में 10-20 होंगे, इन तमाम ने तौबा कर ली, अल्लाह की इबादत में लग गए और कहते हैं कि जब दुनिया से गए तो अल्लाह के वली बनकर चले गए। एक बच्चे की सच्चाई के ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन ये है, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। तो उस बाग वाले ने कहा जानते हो ये क्या कहता है? अच्छा फिर से कहो। अब उसने कहा कि एक दरख्त दे दे, इस एक दरख्त के बदले में मैं 600 दरख्त दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब ये सौदा हो गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। ऐ अल्लाह के नबी, अगर वो दरख्त खरीद करके मैं यतीम को दे दूं तो क्या मेरे लिए वो बशारत है? ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान को सीखा उसके बाद कुरान पाक को सीखा। अल्लाह उसके रसूल की बातों पर यकीन आ गए। आज खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, रात में, दिन में, इबादत में, मामलात में, माशरत में, जूते पहनने, कपड़े पहनने, चेहरे मोहरे के अंदर और खुशी और गमी के अंदर मैं और आप अपनी जिंदगी को टटोले। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरा लिबास, मेरा चेहरा, मेरी खुशी, मेरी गमी, मेरी बच्चों की रुखसती, मेरी शादियां, मेरे घरों का कारोबार, मेरी मुलाजिमत, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर में दाखिल होना, मेरा घर से निकलना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत तक के लिए अल्लाह पाक ने नमूना बनाकर भेजा है। और आपकी तरफ से अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अगर तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन नमूना हो सकता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत हो सकती है। तो नियत करो इंशाल्लाह, अब तक तो जो हो गया हो गया, हम माफी मांगे और आज के बाद नियत करें इंशाल्लाह हमारे नबी के हर तरीके पर चलेंगे। अरे चलेंगे इंशाल्लाह, और सब नियत करते हैं इंशाल्लाह हमारे नबी का एक एक तरीका सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा वजनी है, कोई तरीका छोटा नहीं है। मिसवाक का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी मिसवाक का एहतमाम करेगा अल्लाह उसको 70 फायदे देंगे और सबसे बड़ा नफा ये होगा अल्लाह मौत के वक्त में कलमा नसीब करेगा। हमारे नबी की एक एक सुन्नत दुनिया और आखिरत के बनाने के लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर सहाबा किराम को पूरा यकीन होता था, अपने पूरी जान माल को लगा देते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, अगर वो एक दरख्त में खरीद करके मैं उस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या अल्लाह पाक में? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक तुमको जन्नत में ये देगा, इतने खजूर देंगे। अब ये घर गए, यतीम को दे दिया कि भाई ये एक,
और उसको 600 वाला बाग दे दिया, भाई इसको तू ले ले। और अबू दहदा रजी अल्लाह तआलानु ये अपने घर जाकर दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान कर दिया और यूं कहा, ओ मेरी बीवी, ओ मेरे बच्चे, आ जाओ, मैंने इस बाग को और उसके घर और साजो सामान के साथ बेच दिया। अब घर में से बीवी भी निकली, बच्चे भी निकले। बीवी ने पूछा, भाई कितने में बेचा? अरे बोलो, होता है ना। और अगर कम रुपये में बेचा हो तो बीवी क्या कहेगी, ये सौदा मेरे को मंजूर नहीं। अरे भाई माल मेरा है, खरीदा मैंने है, कमाया मैंने है, लेकिन आज की बीवी हमारे सरों पर आकर खड़ी हो जाती है तो बीवी मना कर देती है, लेकिन वो तो सहाबाई के राम की जिंदगी है। औरतों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है। तो बीवी ने पूछा, कितने में बेचा? इन्होंने कहा कि इसके बदले में अल्लाह हमको जन्नत देगा। अरे बोलो क्या देगा? आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन पर भी यकीन है और जन्नत और जहन्नम पर भी यकीन है। तो बीवी ने जब ये सुना कि भाई 600 दरख्त और पूरा मकान और पूरा कुआं, इन तमाम को देकर अल्लाह पाक के साथ सौदा ये हुआ कि भाई जन्नत का बाग मिलेगा, तो बीवी कहने लगी कि तुमने बड़ी नफे की तिजारत की। नाराज नहीं हुई, इसलिए कि हर एक का यकीन आखिरत का है, हर एक अपनी आखिरत की जिंदगी के बनाने के चक्कर में है। सारी के सारी दुनिया लूट जावे और आखिरत की जिंदगी बन जावे, बोलो सस्ता सौदा है कि नहीं? ये निजाम अल्लाह पाक का चले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है। तो दोस्तों बुजुर्गो, मैं और आप भी अल्लाह पाक की तरफ से एक मौका मिला है, अल्लाह पाक ने जिंदगी हमारी ऐसी बनाई है, अगर हम अपनी जिंदगी का सौदा कर ले, अल्लाह ने एक ही मौका दिया है, एक ही गोल्डन चांस अल्लाह की तरफ से मिला है, अगर अपने आखिरत की जिंदगी को बनाएंगे तो दुनिया की जिंदगी तो 60-70 साल जिंदगी गुजर जाएगी। सिकंदर बादशाह आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करता था, इंतकाल से पहले कहने लगा, जब मेरे जनाजे को तुम लेके चलो तो दोनों हाथ खुले रखना, क्यों? ताकि लोगों को पता चल जावे। इतनी बड़ी दुनिया की जायदाद का मालिक बनकर भी आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन उसके साथ क्या चलेगा? अपना ईमान चलेगा, नमाज चलेगी, मामलात और माशरत का दीन चलेगा, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी चलेगी, दावत की मेहनत चलेगी, अल्लाह के रास्ते में जानो माल का लगाना चलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये आंखें कब्र में जाएगी, आंखों वाला अमल भी कब्र में जाएगा, ये हाथ कब्र में जाएगा, हाथों वाला अमल भी कब्र में जाएगा, ये पैर कब्र में चलेंगे तो पैर वाला अमल भी कब्र में जाएगा। अगर ये पैर मस्जिदों की तरफ अल्लाह के रास्ते में चले होंगे तो अल्लाह पाक उसका बदला अता फरमाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से हमारी पूरी जिंदगी, इबादत की लाइन हमारी सही हो, ईमानियत की लाइन हमारी सही हो, मामलात और माशरत और अखलाकियात की लाइन हमारी सही हो, एक ही जिंदगी अल्लाह पाक की तरफ से मिली है। अगर ये जिंदगी सही गुजर गई तो आखिरत की जिंदगी सही होगी। और कितना बड़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, माला आइनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला कल्बी भी बशर औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। इस दुनिया की जिंदगी के बदले में अल्लाह ने जो जन्नत की नेमत तैयार करके रखी है, किसी आंखों ने देखी नहीं, किसी कानों ने सुनी नहीं और किसी के दिलो दिमाग के ऊपर उसका तस्वुर नहीं गुजरा। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा की आखिरत की जिंदगी, वहां जिंदगी जिंदगी रहेगी, मौत नहीं आएगी, वहां जवानी रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां तंदुरुस्ती रहेगी, कभी बीमारी नहीं होगी, वहां राहत ही राहत रहेगी, कभी मुश्किलात और परेशानी नहीं होगी। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम्हारे अंदर के जज्बात होंगे अल्लाह पाक तुम्हारे अंदर के जज्बात को पूरे कर दे। लेकिन शर्त यह है कि दुनिया अल्लाह अल्लाह की पसंदगी वाली जिंदगी गुजारे, मन चाहत को छोड़कर रब चाही जिंदगी पर चलेंगे, फिर अल्लाह पाक की तरफ से निजाम चलेगा। और दुनिया में अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ दकड़ नहीं है कि एक आदमी नमाज न पढ़े, फजर की नमाज ना पढ़े इसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जावे, बोलो ऐसा है? और अगर ऐसा होता तो, अरे बोलो कोई फजर में गैरहाजिर रहता? ये लोगों ने कानून निकाला है कि हेलमेट के बदले में 500 रुपए दंड, तो बोलो आदमी? ऐसे अल्लाह पाक भी अगर जिस दिन फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे उस दिन तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी, जिस दिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, जिस दिन असर की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे पैर नहीं चलेंगे, और जिस दिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे कान की सुनवाई खत्म हो जाएगी, और जिस दिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे को नींद नहीं आएगी। अगर अल्लाह पाक की तरफ से ये फैसला हो जावे, बोलो हमारी मस्जिदें नाकाफी हो जावे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने दुनिया में थोड़ा सा इख्तियार दे दिया है कि अगर जो चाहे वो कर ले, लेकिन आखिरत में वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ के आदमी खैर का अमल करेगा अल्लाह के दरबार में जाएगा, अल्लाह पाक उसका बदला देंगे। ये बैठने वाला फरिश्ता किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये इंसानों की एक एक जिंदगी को लिखता चला जाता। सीसी कैमरा तो अभी निकला है 5-25 साल से, लेकिन हमारे अल्लाह ने जिस दिन से हम पैदा हो गए बोलो दोनों कैमरे लगा कर रख दिए कि नहीं? ये आंखें क्या देखेगी, ये जुबान क्या बोलेगा, ये हाथ पैर कहां इस्तेमाल होंगे? हाँ, पूरी जिंदगी का रजिस्टर तैयार हो रहा है, और कयामत के दिन कहा जाएगा इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौम अलैक हसीबा, तू अपनी जिंदगी की किताब को पढ़ ले और तू खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जब पूरी जिंदगी उसके सामने कर दी जाएगी, ये इंसान अपनी जुबान से जो कहेगा अल्लाह ने उसको कुरान पाक में नकल कर दिया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस रजिस्टर ने कोई छोटी बड़ी बात को नहीं छोड़ा, जो कुछ के मैंने दुनिया में अमल किया इस रजिस्टर में मौजूद है। और आगे अल्लाह पाक यूं फरमाते, अल्लाह किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं करेगा। एक आदमी गुनाह ना करे और फरिश्ता लिख ले, अरे बोलो ऐसा होगा? एक आदमी छोटा गुनाह करे और फरिश्ता बड़ा गुनाह लिख देवे, एक आदमी नेकी करे और फरिश्ता भूल जावे, अरे बोलो ऐसा होगा? नहीं। फिर ये इंसान अल्लाह पाक से कहेगा, ए अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, अब मैं अच्छे अमल करके लाऊंगा, अब मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, अब मैं हर साल 4 महीने नहीं, हर साल 1 मर्तबा 4 महीने नहीं, बल्कि हर साल 3 मर्तबा 4 महीने लगा कर आऊंगा। लेकिन फिर अल्लाह पाक की तरफ से बोलो कोई मौका नहीं दिया जाए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा इज्तिमा इसीलिए है ताकि अल्लाह करे अल्लाह करे हम आखिरत की तैयारी करने वाले बन जावे। प्यारे नबी ने फरमाया, अल-क़य्यिस मन दाना नफ्सा, अकलमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले और आखिरत की तैयारी आखिरत के अमाल में लग जावे। बेवकूफ और आजीज वो है कि दुनिया में करे तो कुछ भी नहीं और बड़ी बड़ी तमन्ना करे। अल्लाह पाक तो नुक्ते नवाज है। अरे आपने 0 लिख दिया, बोलो उसकी कोई कीमत है? अरे बोलो, दूसरा 0 कोई कीमत, तीसरा? लेकिन अगर आदमी ने 1 लगा दिया और फिर 1 0 कर दिया तो अब कितने हो गए? 10। दूसरा 0 100, तीसरा 0। ये जो हमारे आमाल है दुनिया में, नमाज है, रोजा है, जकात है, अल्लाह के अहकाम है, दावत की मेहनत है, गश्त है, तालीम का हल्का है, मस्तूरात का इज्तिमा है, 2.5 घंटे की मेहनत है, मस्जिद का मशवरा है, आने वाली जमातों की नुसरत है, तकवा तहारत तवक्कुल कनात जोहद सबर शुक्र आखिरत की फिक्र उम्मत का दर्दो गम उम्मत के लिए रोना नमाज पढ़ना जिक्र करना अवाबीन चाश इशराक और तहज्जुद फराइज वाजिबा सुन्नत और मुस्तहबात। ये दोस्तों बुजुर्गों, ये तमाम एकड़ा है, ये 1 लगेगा, उसके आगे अल्लाह पाक नुक्ते नवाज है। फिर अल्लाह जितना इखलास होगा, जितना अल्लाह को राजी करने की नीयत होगी, 1 के 10, 1 के 100, 1 के 1000, 1 के 1,00,000, और बाजे जगह अल्लाह पाक फरमाते, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना जिसके लिए चाहेंगे अल्लाह पाक उसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत में ये चार चार महीने, ये दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह की तरफ से पहला एक है। अगर उसके आगे अल्लाह पाक एकड़ा जीरो 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 लगाते चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी आगे एक न लगावे और उम्मीद लगावे, अल्लाह पाक नुक्ते नवाजे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेवकूफ आदमी वो है कि वो आदमी अमल तो कुछ भी ना करे और लंबी लंबी तमन्नाएं करे। तो मालूम है वो सेठ साहब के पास दुनिया की हर चीज क्या है, बोलो, लिमिटेड क्या है, और आखिरत की हर चीज अनलिमिटेड। तो वो जो सेठ साहब हर एक को देते थे, और एक फकीर आकर बैठा और उसको कहा भाई माफ कर देना, दूसरे वाला फकीर जाकर कहने लगा, अरे भाई यहां, अरे भाई नंदासन के अंदर भी जमात ना बने, ऐसा हो सकता है, इस घर में भी कुछ ना मिले, ऐसा थोड़ा होगा। अरे भाई सेठ साहब नाराज हो गए, मेरा एक रुपये का सवाल था, उसने कहा कि तेरा एक रुपये का सवाल पूरा हो जावे मैं चला जाऊंगा। तो दूसरे वाले फकीर ने अपने जेब में से एक रुपया निकाला और पहले वाले फकीर को कहा ले रुपया चल आगे बढ़। अब उसकी जगह पर दूसरे वाला फकीर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हुआ। अरे बोलो होता है ना, अरे बोलो एहसास होता है ना कि भाई नंदासन के अंदर इस्तेमा था और हमने तो हर घर से एक आदमी देने का वादा किया था और हम तो ये जमात दो पांच दस दे रहे। अरे नियत करो इंशाल्लाह हर घर से एक आदमी देंगे। अरे दोगे इंशाल्लाह? अरे जरा इंशाल्लाह जोर से तो बोलो। अरे दोगे इंशाल्लाह? अरे भाई तुमने भी नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, तुम भी ईशा के बाद खाओगे तो हम भी ईशा के, लेकिन नियत तो करो इंशाल्लाह हर घर से एक आदमी देंगे। अब थोड़ी देर हुई कि सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हुआ। जैसे तुमको भी याद आया ने, आज मौलाना ने आपको याद दिलाया ने कि भाई नंदासन का इस्तेमाल लेने के लिए गए थे तो आपने क्या वादा किया था, हर घर से एक आदमी, और 1500 मकान है तो 1500 आदमी होने चाहिए। अरे बोलो होने चाहिए कि नहीं? अब सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने एक रुपये का सिक्का निकाल करके आए और यूं कहा, भाई साहब माफ कर देना, अल्लाह ने इतना सब दिया है, अल्लाह ने जान दी, माल दी, तंदुरुस्ती दी, औलादों में हाफिज और आलिम दीन के दाई दिए, इस दावत ने हमको क्या नहीं दिया। अरे बोलो क्या कुछ दिया? इज्जतें तो अल्लाह ने दी, नमाज तो अल्लाह ने बनाई, और चेहरा हो और मोड़ा अल्लाह पाक ने प्यारे नबी की सुन्नत पर, चैन सुकून इत्मीनान, ये दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से तो बहुत कुछ मिला। अरे आज से 50 साल पहले तो साइकिलों पर जाते थे। अरे बोलो जाते थे कि नहीं? फिर साइकिल की क्या आई, बोलो ना, बाइक आई, फिर बाइक और भी कुर्बानी देते रहे, तो आज माशाल्लाह बाइक के बदले में क्या आया, अरे बोलो फोर व्हीलर आई के नहीं? पहले छोटा मकान था, अब बड़ा हो गया, पहले छोटी दुकान थी, अब बड़ी हो गई। तो माशाल्लाह आप लोगों का भी थोड़ा कि यार वाकई में सोचने की जरूरत है। तो वो सेठ साहब भी निकले और यूं कहा कि अल्लाह पाक ने इतना सब दिया और एक फकीर का एक रुपये का सवाल था और मैंने वो भी पूरा नहीं किया, उन्होंने एक रुपया दिया, लेकिन फकीर तो बोलो बदल चुका था। अरे बोलो, और उसकी बात भी बदल गई। उसने कहा सेठ साहब वो एक रुपये वाला फकीर तो चला गया, अब तो फकीर भी बदल गया, बात भी बदल गई। क्या बदल गई? बोले अब तो 10 रुपये चाहिए। अब क्या चाहिए बोलो? अब वो चिल्ले का नहीं रहा, फकीर बदल गया, अब तो क्या चाहिए बोलो? अरे बोलो ना यार, 4 महीने है वो फकीर बदल गया। वो पहले चलता था 25-30 साल 20 साल पहले के चिल्ला दे दो जबकि माहौल नहीं था, अब तो माशाल्लाह 200-250 आदमी तो 4 महीने वाले। अल्लाह पाक ने उलमा पैदा कर दिए, साल वाले पैदा कर दिए, अल्लाह ने दुनिया दे दी, तो भाई अब तो फकीर बदल गया और बात भी बोलो बदल गई। अब सेठ साहब का गुस्सा तो ठंडा हो ही गया था, वो वापस घर गए और 10 रुपये की नोट लेकर आए। ऐसे तुम भी नियत करते हो ना इंशाल्लाह हर घर से 4 महीने देंगे? अब वो सेठ साहब ने कहा लो भाई माफ कर देना, मेरी भूल हो गई, ये 10 रुपये। अब ये दूसरे वाला फकीर, अब उसको मालूम है कि फकीर के अड्डे कहाँ होते हैं। अरे बोलो मालूम है ना? ہم لوگ ایک مرتبہ مکے میں گئے اور ایک ٹور آپریٹر کی ضرورت تھی اور ملتا نہیں تھا, تو میں نے کہا ایک آدمی کو, بھائی یہ ٹور والا, بولے ان کے اڈے وہاں ہیں مکے میں فلاں جگہ پر, یہ رات کو سب جمع ہوتے. ہمارے یہاں معذورین کی جماعت آئی تو بھائی کان سے بہرے اور زبان سے گونگے نہیں بول سکتے, اب وہ کہاں ملیں گے؟ ایک نے کہا سوپاری گلی میں چلے جاؤ, لائن میں سب بیٹھے ہوں گے. تو ہر ایک کو اڈے معلوم ہے, تو اس کو بھی اڈا معلوم ہے کہ بھائی فقیروں کا اڈا کہاں ہے. اب یہ گیا اور اس اڈے میں دیکھا کہ وہ والا فقیر جس کو میں نے ایک روپیہ دیا, اب اس نے 10 کی نوٹ بتا کر یوں کہا, دیکھ میں نے ایک روپیہ لگایا, اللہ نے ایک کے کتنے دیے؟ ارے بولو, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن و حدیث کی باتوں پر اللہ پاک کی طرف سے پورا یقین, اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی بات کو چاہا جاتا ہے کہ جو کرے گا, جو آخرت کی تیاری کرے گا, اللہ پاک اس کی آخرت کی زندگی کو بنائیں گے. میں اور آپ توبہ کریں, معافی مانگے, ندامت کے آنسو بہائیں, اے اللہ تو نے زندگی دی, تو نے جوانی دی, تو نے تندرستی دی, تو نے ماحول دیا, تو نے دعوت کی محنت, تو نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ تو نے آسمانی کتابیں اور تو نے اجتماع اور ایسا پیارا ماحول دیا, لیکن ہم نے اے اللہ وقت نہیں لگایا, ہماری بربادی ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں اور آج کے بعد نیت کرتے ہیں اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ, ارے بھائی اس کے لیے سب تیار ہو. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس دعوت کی مبارک محنت کی اے بی سی ڈی 4 مہینے, اس کا الف با تا سا کیا ہے بولو؟ 4 مہینے. یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نے, ہاں پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا. اچھا ذرا کھڑے ہو جاؤ, اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت, گھبراؤ مت, اللہ آپ کو لے جائے گا. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے, اپنے آپ کو پیش کر دو, اللہ تمہاری جان میں, کھڑے رہو کھڑے رہو, ارے ابھی کہاں جوان آدمی بیٹھ, ابھی تو سب کھڑے ہوں گے. اللہ تمہاری جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں اللہ خوب برکت عطا فرماوے, اللہ تمہاری نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا کرے, اللہ دنیا بھی اچھی بناوے, اللہ آخرت کی زندگی بھی اچھی بناوے. ذرا نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اٹھوایا ہے, اب اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو پیش کر دو گے, اللہ آگے بڑھائے گا, اللہ آگے چلائے گا. اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے دل میں بات آ گئی ہے, لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ چلے جائیں گے تو فقیر ہو جائیں گے. آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے, میرے کو معلوم ہے کہ نندسن والے کھڑے تو ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ ہوں گے, کوئی بات نہیں بھائی. کام او بھائی او جوان کیوں بیٹھ گئے, کھڑے رہو, تو سب کھڑے ہیں. آپ کے تھوڑی دیر کھڑے رہنے پر اللہ پاک دوسروں کو توفیق عطا فرمائیں گے. اور کون نیت کرتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی نیت نہیں ہے؟ تو بھی کھڑے ہو جاؤ نا اللہ کے بھروسے پر. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے, وہ تو دوستو بزرگوں دائیں بائیں نہ دیکھے بلکہ آگے دیکھے, آگے قبر ہے, آگے آخرت ہے, آگے جنت ہے, آگے اللہ کا دیدار ہے, آگے مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی ہے. اس بھروسے پر یقین کرتے ہوئے جو چلے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ تو ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ. آدمی تو وہی چلے گا جو کھڑے ہو کر کھڑا ہو. بھائی بیٹھے بیٹھے کوئی چلتا ہے؟ کیا ہونا پڑے گا چلنے کے لیے؟ تو پھر کھڑے ہو جاؤ, کرو نیت, کرو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے. اور کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ بہت سا مجمع تو کھڑا ہوا لیکن بہت سا مجمع بیٹھا ہے. ان کے دلوں میں اللہ نے بات تو اتاری ہے لیکن شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر, جاؤ گے تو فقیر ہو جاؤ گے. ارے آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا, لگانے والے جتنا لگاتے گئے اللہ پاک بولو بڑھاتا چلا گیا. वमान फक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिबु, जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाता है अल्लाह पाक उसको तरक्की देते हैं। और कौन नियत कर रही है? दाएं बाएं जो बैठे थे जिन्होंने नियत की, जरा खड़े हो जाओ ना, हाँ दाएं बाएं अपने साथियों को खड़ा करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ। अब घबराओ मत, एक दो पांच मिनट अल्लाह के लिए खड़े रहोगे अल्लाह पाक आपकी बरकत से औरों को कबूल करेगा, माशाल्लाह। और बहुत मजमा जम कर माशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनता है। अब जरा हिम्मत करके अपने आप को पेश कर दो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह हमारी आखिरत भी बनाएगा। और कौन नियत करते हैं? जरा खड़े हो जाओ, ये तो काम कुर्बानी का है, ये तो खड़े होकर चलने का है। और जितने चले हैं, सहाबा चले बर्बाद नहीं हुए, ताबीन चले, तबे ताबीन चले, लाखों अवलिया अल्लाह चले, और इस वक्त के हजारों बुजुर्गाने दीन भी चलते हैं, और लाखों जमाते चलती है, आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ, और इंशाल्लाह हमारा भी नहीं होगा। अरे उसके लिए सब तैयार हो इंशाल्लाह, अरे बोलते भी नहीं, अरे भाई सब तैयार होने तो जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत से हमारे साथी वो होंगे जिन्होंने पहले नियत की होगी, बहुत सो ने वसूली दे दी, बहुत सो ने नाम लिखा दिया, अब किसी वजह से अटक गए, आज नियत करो कि इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ माशाल्लाह। अपने दाएं बाएं साथियों को खड़ा करो, अपने दोस्तों को खड़ा करो, माशाल्लाह। और अच्छा भाई आपका तश्कीली कमरा कहाँ है? भाई जरा करीब आ जाओ, आप लोग मेरे पास आ जाओ, तख्त के पास आ जाओ, आ जाओ आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। भाई ये उठने वालों को हम दरख्वास्त करेंगे एक थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखे, देखो इंतजार ना करे, माशाल्लाह मजमा बहुत जमकर बातों को सुनता है, और अल्लाह करे, अल्लाह करे जिसकी मुकद्दर में होगा वो जाएगा, लेकिन हम बैठने वालों को अल्लाह पूरा सवाब अता फरमाएंगे। आ जाओ, और भी जिसकी नियत हो रही दिल्ली से आ जाओ, आओ आओ, घबराओ मत। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएंगे, अल्लाह उसकी दुनिया बनाएंगे, अल्लाह आखिरत बनाएंगे, अल्लाह उसकी नस्लों को चमकाएंगे, अल्लाह पाक दुनिया में भी बरकतें देगा, दुआओं में ताकत देगा, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बतें होगी, और अल्लाह उसकी जन्नत को कब्र का बाग बनाएगा। आओ आओ माशाल्लाह, और भी जिसकी नियत, आओ आओ, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, लेकिन जो उठकर जावे उसका क्या भला होगा, वो अपने आप को बिठाए। अच्छा आप लोग वहां चलो, देखो सामने हमारा भाई कोई तश्कीली कमरे में है, हमारे दो तीन साथी पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब कबूल फरमावे। एक एक का नाम लिख लो, इनका इनका गाँव का नाम, मस्जिद का नाम। अच्छा भाई आप लोग क्या करोगे? अच्छा भाई नियत तो सबके, ओ भाई बैठ जाओ ने, ओ मेरे भाई, ओ चचा, ओ हाजी साहब, एक थोड़ी देर के लिए बैठो, मैंने बात तो इसके लिए जल्दी खत्म कर दी ताकि हमारी तश्कील मुकम्मल। अच्छा बोलो हमारी क्या नियत है? भाई नियत तो सबकी है ना, अरे भाई नियत तो सबकी है ना, आप बोलते भी, अरे भाई नियत तो सबकी है ना, हाँ माशाल्लाह। एक अमल करोगे 10 मिनट का करोगे, अरे भाई करोगे?